परम आदरणीय भिक्षु संघ, हिमालय राज्य की राजधानी के नागरिकों, शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सभी तो अशांत हैं, सभी तो बेचैन हैं, सभी दुखियारे, पुरुष हो या नारी, धनवान हो या निर्धन, अनपढ़ हो या विद्वान, सभी दुखियारे। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, आज एक बात का दुख तो कल किसी दूसरी बात का दुख। जीवन इसी प्रकार का है, अनचाही बातें होती रहती हैं और उनकी वजह से व्यक्ति दुखी होते रहता है। मनचाही बातें कभी होती हैं, कभी नहीं होती, और ज़्यादातर तो नहीं ही होती, क्योंकि एक मनचाही पूरी होने पर कोई संतोष नहीं करता, दूसरी मनचाही की कल्पना कामना करने लगता है, वो पूरी हो जाए तो तीसरी की कल्पना कामना शुरू हो जाए, कहाँ अंत आता है। तो दुखियारा ही दुखियारा, दुखियारा ही दुखियारा, कैसे दुखों के बाहर आए, कैसे सुख शांति का जीवन जी सकें, इसका चिंतन अपने यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने, बुद्धों ने, अरहंतों ने, इसका चिंतन किया और रास्ता ढूंढा। दो रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है धर्म। जीवन में उतरे और कोई रास्ता नहीं, धर्म जीवन में उतरे, पर कैसे उतरे, बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई। धर्म शब्द का अर्थ ही भूल गए तो उसका पालन क्या करेंगे। आज तो धर्म शब्द इस्तेमाल करते ही, उसका प्रयोग करते ही सुनने वाले के कान खड़े होते हैं, ये आदमी कौन से धर्म की बात करेगा, हिंदू धर्म की कि बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि ईसाई धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि सिख धर्म की कि पारसी धर्म की कि यहूदी धर्म की, कौन से धर्म की बात। अपने यहाँ पुरातन काल में जब धर्म का सही अर्थ लोग समझते थे तो इस तरह के प्रश्न नहीं उठा करते थे। धर्म धर्म है, उसका अपना अस्तित्व है और बहुत महान अस्तित्व है, उसे हमने छोटा बना दिया, उसे गौण कर दिया, उसके साथ हमने कोई विशेषण जोड़ा, उसके साथ हमने कोई पुछल्ला जोड़ा और वो अपना गौरव खो बैठा। धर्म धर्म है, वो हिंदू नहीं, वो बौद्ध नहीं, वो जैन नहीं, वो सिख नहीं, वो ईसाई नहीं, वो पारसी नहीं, धर्म है जो सर्वव्यापी है, जो अणु अणु को धारण करता है, अणु अणु जिसे धारण करते हैं, सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है। अपने यहां पुरानी भाषा में उसको धर्म कहते थे। वो हिंदू कैसे होगा, वो बौद्ध कैसे होगा, वो जैन कैसे होगा, वो ईसाई कैसे होगा। सार्वजनीन होता है धर्म, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है, तो ही धर्म धर्म होता है। आज तो परिभाषा ही भूल गए। पुराने जमाने में धर्म किसे कहते थे, शाब्दिक अर्थ क्या, धारेति ति धम्म, धारण करे सुधर्म, क्या धारण करे, तो समझाया गया उन दिनों की भाषा में, अत्तनो स्वभाव अत्तनो लक्षण धारेति ति धम्म, अपना स्वभाव धारण करता है, अपना लक्षण धारण करता है, अपनी प्रकृति धारण करता है, तो धर्म है। इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग आज भी होता है, बहुत थोड़ा होता है पर आज भी होता है। मानो हजारों वर्ष पुराने कोई गूंज आ रही है, भूल बैठे वैसे तो धर्म को हिंदू बनाया, बौद्ध बनाया, जैन बनाया, ईसाई बनाया, तो सही अर्थ भूल बैठे, फिर भी एक गूंज आती है बहुत पुराने समय की, जब कोई कहता है कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये नियम है, इसमें हिंदू बने की क्या बात आई, इसमें बौद्ध बने की कि जैन बने की कि ईसाई बने की बात क्या है, धर्म है, उसका स्वभाव है, यही अर्थ होता था धर्म शब्द का। इसी प्रकार बर्फ का धर्म है, माने उसका स्वभाव है शीतल होना और शीतल करना। आज भी इस शब्द का प्रयोग होता है, हर प्राणी जरा धर्मा है, मरण धर्मा है, माने उसका स्वभाव है, समय पाके जर्जरित होगा ही, वो प्रति क्षण जर्जरित हुए जा रहा है, जर्जरित हुए जा रहा है, तो जरा धर्मा है, मृत्यु को प्राप्त होगा ही, जन्म लिया है तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये नियम है, मरेगा ही, इसीलिए मरण धर्मा कहा। यूं थोड़ी थोड़ी जगह वो पुराना अर्थ आज भी प्रयोग में आता है। इस परिभाषा में धर्म को समझें तो कल्याण हो जाए। धर्म हिंदू नहीं होता, धर्म बौद्ध नहीं होता, धर्म जैन ईसाई सिख इत्यादि नहीं होता, ये सारे समाज हो सकते हैं, मनुष्यों का एक समाज, एक समूह, एक संप्रदाय जो इस प्रकार की वेशभूषा रखने वाला हो या उस प्रकार की मान्यताओं को मानने वाला हो, दार्शनिक मान्यताओं को मानने वाला हो, इस प्रकार के तीज त्यौहार मानने वाला हो, इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाला हो, इस प्रकार के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करने वाला हो, इस प्रकार के कर्मकांड करने वाला हो, अलग अलग समाज के, अलग अलग संप्रदाय के अपने अपने तीज त्यौहार, अपने अपने व्रत उपवास, अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं, अपना अपना पूजन अर्चन, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। बहुत बार तो यूं होता है कि जो संप्रदाय है वो धर्म का दुश्मन बन जाता है। क्यों बन जाता है? किसी प्रकार की वेशभूषा धारण करके आदमी समझता है कि मैं बड़ा धर्मवान हो गया, जबकि हो सकता है उसमें धर्म का नामो निशान न हो। किसी प्रकार का कर्मकांड पूरा करके एक आदमी समझता है मैं धर्मवान हो गया, जबकि उसमें धर्म का नामो निशान न हो। किसी तरह की दार्शनिक मान्यता को मान करके एक आदमी समझता है मैं बड़ा धर्मवान हो गया, जबकि उसमें धर्म का नामो निशान न हो। किसी तरह के पर्व त्योहार, किसी तरह का व्रत उपवास कर लिया, कोई पूजा अर्चन कर ली और मान लिया कि मैं बड़ा धर्मवान हूं, धोखा हुआ ना, बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो समझें अपने यहां प्राचीन समय में धर्म शब्द का प्रयोग कैसे होता था और क्यों वो लोगों को शांति देने वाला होता था, क्योंकि लोग उसको ठीक से जैसे धारण करना चाहिए वैसे धारण करते थे। धर्म का अर्थ धारण करना। बहुत समय तक प्राचीन समय में हमारा चित्त क्या धारण करता है, हमारा चित्त जो धारण करता है वो धर्म। इस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग सदियों तक चला। चित्त क्या धारण करता है वो धर्म। चित्त सद्भावना भी धारण कर सकता है, दुर्भावना भी धारण कर सकता है, चित्त निर्मलता भी धारण कर सकता है, मैल भी धारण कर सकता है। तो दो विभाजन होने शुरू हुए। जब जब चित्त मैल धारण करता है तो हमारा अकुशल होता है, हमारा अमंगल होता है, हमारी हानि होती है, हमारा सुख छिन जाता है, हम दुखियारे हो जाते हैं। तो जब जब चित्त मैला होता है, मैल धारण करता है, तो उन दिनों में उसे अकुशल धर्म कहा। और जब जब चित्त सद्भावना धारण करता है, अच्छे गुण धारण करता है, कि जिससे हमारा मंगल सदता है, जिससे हमारा कल्याण होता है, हमें सुख शांति मिलती है, उसे कुशल धर्म कहा। सदियों तक धर्म के साथ कोई विशेषण लगा, कोई एडजेक्टिव लगा, तो हिंदू बौद्ध जैन ईसाई नहीं लगा, यही लगा कुशल धर्म अकुशल धर्म, कुशल धर्म अकुशल धर्म। और बात आगे चली, आगे जाकर के एक और शब्द इस्तेमाल होने लगे, दो शब्द, शुक्ल धर्म कृष्ण धर्म। शुक्ल धर्म माने वो धारण किया हुआ, वो धारण की हुई चित्त वृत्ति जो हमारे मानस को शुद्ध बनाती है, शुक्ल बनाती है, उजला बनाती है, स्वच्छ बनाती है, वो शुक्ल धर्म। ये धारण किया जिससे चित्त शुक्ल हो गया। और कृष्ण धर्म कि जिसके धारण करने से हमारा चित्त कालिमा से भर जाता है, मैल से भर जाता है, वो कृष्ण धर्म। कुशल अकुशल, इसके बाद ये दो शब्द प्रयोग होने लगे, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण। और समय बीतता गया, हम और दो शब्द देखते हैं जो पुराने साहित्य में इस्तेमाल हुए, आर्य धर्म अनार्य धर्म। क्या आर्य होता है, क्या अनार्य होता है? सदियां बीत जाती हैं तो भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो आर्य शब्द किसी एक जाति विशेष के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा गोरा चिट्टा आदमी हो, बड़ी लंबी नाक हो, बड़ी बड़ी आंखें हो तो कहेंगे ये आर्य है, कोई काले रंग का हो, घुंघराले बाल हो तो कहेंगे हबशी है या अमुक मंगोलियन है। इन अर्थों में आर्य शब्द का अर्थ उन दिनों की अपनी भाषा में नहीं होता था। आर्य किसको कहते थे? जो गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर आए, अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म के रास्ते पर आए, और आगे बढ़ते 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 शरीर और चित्त के परे जो परम सत्य है, अपने भीतर सत्य का अनुसंधान करते करते, उसकी खोज करते करते, शरीर और चित्त के सारे क्षेत्र का, सारे क्षेत्र का अनुसंधान करने के बाद उसके परे का जो सत्य है, परम सत्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो एक रस है, उसका जो व्यक्ति साक्षात्कार कर ले, वो भारत की अपने यहाँ के सारे इन प्रदेशों की भाषा में उसे आर्य कहते थे। और जो ऐसा नहीं कर रहा है, गलत रास्ते पड़ा है, वो अनार्य है। हर अनार्य आर्य बन सकता है, हर अनार्य को इस बात की सुविधा है, सहूलियत है, रास्ता है, वो आर्य बन सकता है। चित्त जब निर्मलता में पुष्ट हो जाता है, उसने निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, मुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, मोक्ष अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, नित्य शाश्वत ध्रुव का साक्षात्कार कर लिया, तो निर्मल हो गया, आर्य हो गया, संत हो गया, सज्जन हो गया, भला आदमी हो गया, अब उससे दुष्कर्म नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति आर्य। तो चित्त पर ऐसी वृत्तियां जब आए तो उसको आर्य धर्म कहा, दूषित वृत्तियां आए तो अनार्य धर्म कहा। और कुछ समय बीतने पर हमें दो शब्द और मिलते हैं इतिहास में, सत्य धर्म असत्य धर्म। माने जिस रास्ते पर हमें चलना है धर्म का अनुसंधान करने के लिए, धर्म वस्तुतः क्या है इसे अनुभूति से जाने, और धर्म सचमुच पुस्तकों से नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता, इन प्रवचनों से नहीं जाना जा सकता। धर्म को सचमुच जानना है तो अपनी अनुभूति पर उतारना होगा। धर्म का साक्षात्कार करना होगा। जैसा है, कृष्ण है तो कृष्ण है। इस समय मेरे चित्त में कृष्ण धर्म जागा है, माने कालस जागी है। इस समय मेरे चित्त में शुक्ल धर्म जागा है, माने उजाला जागा है, निर्मलता जागी है। जैसा भी है उसी को देखता जा रहा है, अनुसंधान हो रहा है, धर्म का अनुसंधान हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यूं धर्म का अनुसंधान करने वाला आदमी धर्म के सारी गहराइयों को समझता हुआ, सारी गहराइयों को समझता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन तभी आगे बढ़ेगा जबकि हर कदम सच्चाई के साथ होगा। कहीं कल्पना नजदीक आने ना पाए, कोई मान्यता कितने ही सही क्यों ना हो, नजदीक आने ना पाए। सत्य क्या है जो इस क्षण मेरी अनुभूति पर उतर रहा है, मेरे लिए वही सत्य है। जो सत्य किसी अन्य की अनुभूति पर उतरा, मेरे लिए सत्य नहीं है, मैं उसकी केवल कल्पना करूंगा, मेरे लिए वो केवल मान्यता है, मैंने जाना नहीं क्या सत्य है। अपनी अनुभूति पर उतरे, जो सत्य अपनी अनुभूति पर उतरे, उसी के सहारे इस क्षण ये सत्य मेरे चित्त में आया, मैंने उसका दर्शन किया। ये क्षण गया, अगला क्षण आया, मेरे चित्त पर क्या जागा, मैंने उसका दर्शन किया। ये क्षण गया, अगला आया, यूं क्षण प्रतिक्षण सत्य 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 के ही सहारे चलता चला जाएगा, परम सत्य तक पहुंच जाएगा। उसको सत्य धर्म कहा, उसी को सद्धर्म कहा। और कल्पनाओं के सहारे चलेगा, कोई सुनी सुनाई बात के सहारे चलेगा, कोई पढ़ी पढ़ाई बात के सहारे चलेगा, तो कल्पना है। किसी बड़ी कल्पना में उलझ के रह जाएगा और मान लेगा कि मैंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया। अरे आरंभ ही गलत हुआ भाई तेरा, तूने सत्य से आरंभ ही नहीं किया, तू परम सत्य तक कैसे पहुंच गया रे। सत्य भी तेरा कल्पित तो परम सत्य भी तेरा कल्पित, सद्धर्म नहीं हुआ, सत्य धर्म नहीं हुआ। मुख्य बात, धीरे 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 फिर यूं होने लगा कि जिसको कुशल धर्म कहें, जिसको आर्य धर्म कहें, जिसको सद्धर्म कहें, बस उसे ही धर्म कहें। और जो अकुशल धर्म है, जो अनार्य धर्म है, जो कृष्ण धर्म है, हमारे मन को कालिमा से भरता है, हमारे मन को गंदगी से भरता है, उसे पाप कहें। तो अब धर्म शब्द केवल कुशल चित्त वृत्तियों के लिए प्रयोग होने लगा। समय बीतते 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 चित्त की वृत्तियां अच्छी हैं तो धर्म है, चित्त की वृत्तियां दूषित है तो अधर्म है, पाप है। यूं ये शब्द इस तरह से इस्तेमाल होने लगा। फिर भी बहुत ठीक रहा यहां तक भी, इसके साथ और कोई पुछल्ले नहीं लगे, और किसी प्रकार के जाति या सांप्रदायिक विशेषण इसके साथ नहीं लगे। धर्म और अधर्म, धर्म और पाप, धर्म का जीवन जीवो, पाप के जीवन से बचो। यानी चित्त मैला करोगे तो शरीर और वाणी से ऐसा कर्म करोगे ही जो पाप से भरा होगा, अपने लिए हानिकारक होगा, औरों के लिए हानिकारक होगा, उससे बचो। और चित्त को निर्मल रखोगे तो शरीर से और वाणी से ऐसे ही कर्म होंगे जो अपने लिए भी कल्याणकारी होंगे, औरों के लिए भी कल्याणकारी होंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी परिभाषा धर्म की स्थापित हो गई कि धर्म वो जो हमारे सत्कर्मों को प्रकाशित करे, शरीर के वाणी के मन के सारे कर्म अच्छे हों तो धर्म है, और पाप वो जो हमारे सारे दुष्कर्मों को प्रकाशित करे, बताए कि किस तरह से हम बुरा काम कर रहे हैं शरीर का, वाणी का, चित्त का, वो पाप हुआ। अब इस परिभाषा से, इस अर्थ से धर्म शब्द को समझें तो इसमें हिंदूपने की क्या बात, इसमें बौद्धपने की क्या बात, इसमें जैनपने की कि ईसाईपने की कि मुस्लिमपने की कि सिखपने की बात क्या है, इसमें सार्वजनीन बात है ना। एक आदमी अपने को सिख कहने वाला, हिंदू कहने वाला, बौद्ध कहने वाला, ईसाई कहने वाला, एकदम धर्मात्मा भी हो सकता है और एकदम पापी भी हो सकता है। एक आदमी इस तरह का कर्मकांड करने वाला, उस तरह का कर्मकांड करने वाला, इस तरह की वेशभूषा वाला, उस तरह की वेशभूषा वाला, इस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला, उस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला, इस तरह के पर्व त्योहार मानने वाला, इस तरह के व्रत उपवास करने वाला, बिल्कुल धर्मवान भी हो सकता है, एकदम अधर्मी भी हो सकता है। तो इन सारी बातों से धर्म का लेन देन क्या, जरा भी लेन देन नहीं। धर्म स्वभाव को, कैसा स्वभाव धारण किया है। जैसे कहा अग्नि का स्वभाव है जलना, तो सबके लिए जलेगी वो, ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, किसी के लिए पक्षपात नहीं होता। एक आदमी उस पर हाथ धर दे, भले अनजाने में ही धर दे, वो तो जलाएगी, उसका स्वभाव है जलाना। वो इस बात को नहीं देखेगी कि यह हाथ रखने वाला व्यक्ति अपने को हिंदू कहता है कि अपने को बौद्ध कहता है कि अपने को जैन कहता है कि अपने को ईसाई कहता है, यह हाथ रखने वाला व्यक्ति ऐसे कर्मकांड करता है कि वैसे कर्मकांड करता है, ऐसी दार्शनिक मान्यता मानता है कि वैसी दार्शनिक मान्यता मानता है कि कोई दार्शनिक मान्यता नहीं मानता। हाथ रखा है ना, छुआ है ना, तो जलाएगी ही। अगर नहीं जलाती है तो अग्नि नहीं है। वो अग्नि इसीलिए है कि वो स्वयं जलती है और जलाती है। जिस पात्र में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो जलते जलते पहले उस पात्र को जलाएगी, फिर आसपास के सारे वातावरण को संतापित कर देगी, उत्तापित कर देगी, ताप से भर देगी, और जो उसके लपेट में आ जाएगा उसी को जलाना शुरू कर देगी। ये उसका स्वभाव है। ऐसे बर्फ का स्वभाव है शीतल होना, शीतल करना। जिस किसी पात्र में हमने बर्फ रख दी, पहले ही वो पात्र को शीतल करेगी, स्वयं शीतल है, पात्र को शीतल किया और वो शीतलता वातावरण में फैलने लगी। जिस किसी के संपर्क में आई उसी को शीतल किया, उसी को शीतल किया, ये उसका धर्म है। अगर ऐसा नहीं करती है तो बर्फ बर्फ नहीं है। अगर वो जलन पैदा करती है तो बर्फ नहीं है। अगर शीतलता पैदा करती है तो वो अग्नि नहीं है। ये धर्म है जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, इसीलिए सनातन है। आज के हजारों वर्ष पहले भी अग्नि इसी प्रकार जलती थी और जलाती थी, आज भी अग्नि इसी प्रकार जलती है और जलाती है, भविष्य में हजारों वर्षों तक भी अग्नि इसी प्रकार जलेगी और जलाएगी। इसीलिए कहा एष धम्मो सनातनो सनातन है भाई, अनादि काल से ऐसे चला आया है और भविष्य में ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ के संतों ने, महापुरुषों ने, बुद्धों ने, अरहंतों ने, स्थित प्रज्ञों ने, अनासक्तों ने भीतर सच्चाई देखी तो बात समझ में आ गई कि जब जब हम मन मैला करते हैं, मन में क्रोध जगाएं कि द्वेष जगाएं कि ईर्ष्या जगाएं कि अहंकार जगाएं कि वासना जगाएं, जो मैल जगा लें, कुदरत हमें तत्काल दंड देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। हमने क्रोध जगाया, चित्त में क्रोध धारण किया, अब क्रोध का क्या स्वभाव है? क्रोध का स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, स्वयं भी जले औरों को भी जलाए, ऐसे ही मैंने विकार पैदा किया, क्रोध पैदा किया, तो सबसे पहले तो मैं जलने लगा और फिर आसपास के सारे वातावरण को इतना तनाव से भर दूंगा, क्योंकि क्रोध जगाया है ना, सारे वातावरण को तनाव से भर दूंगा। उस समय मेरे संपर्क में जो आएगा वही बेचारा व्याकुल हो जाएगा, वही दुखियारा हो जाएगा। तो स्वयं भी दुखी होना और औरों को दुखी करना, स्वयं भी व्याकुल होना औरों को व्याकुल करना, ये हर विकार का स्वभाव है। जो विकार जगा लें अपने भीतर, वो विकार हर हालत में हमें भी दुखी बनाएगा, औरों को भी दुखी बनाएगा। इसी तरह से चित्त को विकारों से विहीन कर लें, निर्विकार कर लें, निर्मल कर लें, और निर्मल करते ही एक घटना ऐसी घटती है, कुदरत का फिर एक नियम है कि चित्त जैसे ही निर्मल होगा, नितांत निर्मल होगा, अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से भर जाएगा, अनंत उपेक्षा यानी समता भाव से भर जाएगा। ये चार गुण समाये हुए हैं निर्मलता में। जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, मैत्री करुणा सद्भावना जागने लगी, तो देखेगा भीतर बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ा सुख मालूम होता है। आसपास के सारे वातावरण को ऐसा व्यक्ति सुख शांति से भर देगा, उस समय जो उसके संपर्क में आए उसी को बड़ी सुख शांति महसूस होगी, बड़ी सुख शांति महसूस होगी। ये धर्म है, ये नियम है, ये कुदरत का कानून है। इसमें हिंदू पने की क्या बात, इसमें बौद्ध पने की क्या बात, जैन पने की क्या बात? क्रोध जगाऊं तो उसे क्या लेबल लगाऊं भाई, आपके हिंदू क्रोध जाग गया, वो अब के बौद्ध क्रोध जागा है, अब के जैन क्रोध जागा है। अरे क्रोध क्रोध है भाई, और क्रोध आने पर जो बेचैनी आई उसको क्या लेबल लगाऊं? ये हिंदू बेचैनी है, अब के मुस्लिम बेचैनी है, ये जैन बेचैनी है, ये बौद्ध बेचैनी है। तब तो हिंदू धर्म अलग, बौद्ध धर्म अलग, जैन धर्म होता। अरे धर्म है, स्वभाव है उसका, क्योंकि मैंने चित्त में विकार जगाया है, मुझको उसका दंड भुगतना ही होगा। कुदरत किसी को बख्शती नहीं, कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती। कोई अच्छा राज्य हो, बहुत अच्छा राज्य हो, तो उस राज्य के जो कानून कायदे हैं, जो नियम है, जो दंड विधान है, वो सब पर एक जैसे लागू होंगे। एक आदमी राज्य के नियमों को तोड़ता है तो उसके तोड़ने की वजह से जो दंड मिले, तोड़ने वाला कोई हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी रंग रूप का हो, पुरुष हो या नारी हो, एक जैसा दंड मिलेगा तो वो अच्छा राज्य माना जाता है, किसी की तरफदारी नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा कोई राज्य हो कि जो पक्षपात कर रहा है तो उसको अच्छा राज्य नहीं मानेंगे। कुदरत में तो पक्षपात होता ही नहीं। राज्य कोई ऐसा हो कि जिसमें पक्षपात नहीं होता, क्योंकि राज्य का संविधान कहता है कि हम किसी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे, हमारा विधान सबके लिए एक जैसा है, हमारे नियम सबके लिए एक जैसे हैं। फिर भी किसी ने नियम तोड़ा और किसी के पकड़ में नहीं आया, सरकार की पकड़ में नहीं आया तो बच गया, दंड नहीं मिला उसे, या पकड़ में आ गया तो दंड देने वाले आदमी ने अपनी आंख फेर ली, कोई कारण हो गया उसने पक्षपात कर दिया, तो विधान तो अपनी जगह ठीक है लेकिन फिर भी पक्षपात हो गया। कुदरत के कानून में ऐसा नहीं होता, उसमें न देर होती है न अंधेर होता है, हो ही नहीं सकता। आग पर हाथ धरे हाथ जलेगा ही, दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। आग पर हाथ धरा है ना, हाथ जलेगा ही। हमें हाथ का जलना अच्छा नहीं लगता तो हाथ न रखें, हम आग पर हाथ न रखें, सीधी सी बात है। हमको जलना नहीं अच्छा लगता, हमको दंड अच्छा नहीं लगता, अपना हाथ अलग कर लें हम। लेकिन ये बोलने लगे अच्छी बात हाँ, तो सीधे साधे नियम प्रकृति के हम भूल बैठे, क्योंकि हम धर्म शब्द का अर्थ भूल बैठे। अगर हमको दंड अच्छा नहीं लगता तो हम नियमों को नहीं तोड़े। ये राज्य के नियमों की बात हुई, ठीक ऐसे ही प्रकृति के नियमों की बात। हमको दंड अच्छा नहीं लगता, किसको दंड अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, तो भाई हम प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़े। प्रकृति का नियम ये कहता है कि अगर हमने अपने मन को विकारों से विकृत किया तो तत्काल दंड मिलेगा, तत्काल मिलेगा। क्रोध कोई जगा ले, द्वेष कोई जगा ले, दुर्भावना कोई जगा ले, अहंकार कोई जगा ले, तत्काल दंड मिलता है, देर नहीं लगती। मरने के बाद मिलेगा सो अलग, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा वो मरने के बाद की बात। धर्म तो ये सिखाता है, संदिट्ठिकु अभी संदृष्टिक, तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, अकाली को इस समय क्या हो रहा है, इसको महत्व दे। तो इस समय ही हो रहा है, जैसे ही क्रोध जगाया प्रकृति ने डंडा मारना शुरू किया, व्याकुल बना दिया। जैसे ही अहंकार जगाया व्याकुल बना दिया, कोई विकार जगाया प्रकृति ने तुरंत व्याकुल बना दिया। विकार नहीं जगाया, मन को सद्गुणों से भर लिया, मैत्री करुणा सद्भावना जगाई, तुरंत पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। मरने के बाद क्या पुरस्कार आएगा उसको, अलग रखे, आएगा ही, हम ना नहीं कहते, लेकिन तुरंत मिलने लगा। इतनी शांति महसूस होती है, जरा मन को निर्मल करके देखें, थोड़ी देर के लिए निर्मल करके देखें और उसमें ये सद्गुण भरें, मैत्री भरें, करुणा भरें, सद्भावना भरें, औरों के लिए मंगल भाव जगाएं, भीतर कितनी शांति, कितनी शांति, पुरस्कार मिलने लगा ना। तो धर्म तत्काल फल देता है, बुराई का तत्काल दंड देता है, अच्छाई का तत्काल पुरस्कार देता है, और पक्षपात होता नहीं, जरा सा पक्षपात होता नहीं। क्रोध जो जगाएगा वो व्याकुल हो जाएगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे भारतीय हो, चाहे नेपाली हो, चाहे नेवारी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, जो मन को मैला करेगा कुदरत तत्काल दंड देगी। और एक घटना घटने लगेगी, मैंने एक बार क्रोध जगाया, क्यों कि अनचाही बात हो गई, बाहर 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 से यूं लगता अनचाही बात हो गई, मैंने क्रोध जगाया। अब धीरे धीरे वो मेरा स्वभाव बनने लगा, जब जब अनचाही बात होगी फिर क्रोध जगाऊंगा, जब जब अनचाही बात होगी फिर क्रोध जगाऊंगा। अरे क्रोध का गुलाम हो गया, बहुत चाहता हूं कि निकल जाऊं इसमें से, कैसे निकल जाऊं, गुलाम हो गया, क्रोध का गुलाम हो गया, अपने दुखों का गुलाम हो गया। कि हर किसी विकार का गुलाम जो हुआ वो अपने दुखों का गुलाम हो गया। इसी प्रकार इस स्वभाव को पलटना शुरू कर दे। अपने यहाँ के महापुरुषों ने पलटने का रास्ता बताया, केवल यही कह के रह जाते कि देखो ये दुख है, देखो ये विकार बड़े हानिकारक हैं, और देखो इनको नहीं जगाना चाहिए, मन में विकार नहीं लाने चाहिए, कोरा उपदेश होता। और उपदेशों से तो भाई इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है। थोड़ी देर बुद्धि विलास हुआ, थोड़ी देर वाणी विलास हुआ, बड़ा अच्छा लगा, आज तो धर्म की बात बहुत सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जीवन में तो उतरा नहीं। जीवन में उतरने का कोई तरीका होता है, कोई विधि होती है, कोई टेक्निक होती है, वो हमारे यहाँ के महापुरुषों ने सिखाई, और उसको धारण करके हम कैसे धर्म धारण कर सके। तो पहले ये तो समझें कि धर्म है क्या, किसको धर्म कहे जा रहा हूँ, जिसको धर्म कहे जा रहा हूँ वो सचमुच धर्म है ना। ये बाहरी बाहरी वेशभूषा हमको एक समाज से, एक संगठन से, एक संप्रदाय से जरूर बांध देगी। ये बाहरी बाहरी कर्मकांड हमको एक समाज से, एक संप्रदाय से बांध देगी, उनकी कोई निंदा नहीं है। हर संप्रदाय, हर समाज अपने अपने कर्मकांड भले करे, अपनी अपनी पूजा पाठ भले करे, अपने अपने व्रत उपवास भले करे, अपने अपने तीज त्यौहार भले मनाए, कोई दोषी बात नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करे जो किसी दूसरे संप्रदाय वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इसका तो जरूर ख्याल रखे। लेकिन इसको धर्म नहीं मान ले कहें। धर्म के लिए तो एक ही मापदंड कि मेरा चित्त विकारों से मुक्त हो रहा है कि नहीं। जितना जितना मुक्त हो रहा है उतना उतना धर्म में प्रतिष्ठित हुए जा रहा हूँ, और जितना जितना चित्त में विकार बढ़ते जा रहा है उतना उतना धर्म से दूर हुए जा रहा हूँ। तो इन दोनों बातों का कोई लेन देन नहीं। हम चाहे जैसे व्रत उपवास करें, हम चाहे जैसे पर्व त्यौहार मनाएं, हम चाहे जैसे दार्शनिक मान्यता मानते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को चाहे हिंदू कहते रहें, बौद्ध कहते रहें, जैन कहते रहें, ईसाई कहते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को ब्राह्मण कहें, क्षत्रिय कहें, वैश्य कहें, शूद्र कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। काला हो, गोरा हो, भूरा हो, पीला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुरुष हो, नारी हो, सार्वजनीन होता है धर्म, सार्वजनीन होता है। बैर से बैर नहीं दूर हो सकता, मैत्री करने से बैर दूर होता है। ये किसी एक महापुरुष की वाणी है, इसलिए मानने की बात नहीं है। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। किसी ने क्रोध पैदा किया, बदले में मैंने भी क्रोध पैदा किया, तो और चौगुना पैदा करेगा, मैं और आठगुना पैदा करूंगा, कहाँ शांति आएगी। आग लगाई हमने, और आग में हमने पेट्रोल और डाल दिया, उसने हमारी आग में पेट्रोल डाला, हमने उसकी आग में पेट्रोल डाला, अरे तो तू भी जल मैं भी जलूं, तू भी जल मैं भी जलूं, कहाँ से शांति आएगी रे। धर्म कहाँ, धर्म तो तब होगा जबकि हम पेट्रोल डालने के बजाय शीतल जल डालेंगे। किसी ने गाली दी हमें, किसी ने अपमान किया हमारा, अगर सचमुच धर्म के रास्ते चले हैं, आगामी चार दिनों में समझेंगे कि धर्म के रास्ते कैसे चले। बौद्ध धर्म के रास्ते नहीं, भूल कर भी नहीं समझ लेना, जैन धर्म के रास्ते नहीं, हिंदू धर्म के रास्ते नहीं, धर्म के रास्ते। हम धर्म के रास्ते जो कि सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सनातन है, कुदरत का बंधा बनाया नियम है, उसके सहारे हम चलें अगर, तो कैसे चलेंगे ये आगामी चार दिनों में समझेंगे। आज तो केवल ये समझाना चाहते हैं कि धर्म, इसका अपना एक अस्तित्व है, बहुत महान अस्तित्व है। इसके साथ कोई और पुछल्ला लगा करके इसको छोटा मत बनाओ। हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होगा औरों का नहीं, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होगा औरों का नहीं, जैन धर्म केवल जैनियों का होगा औरों का नहीं, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का होगा, मुस्लिम धर्म केवल मुस्लिमों का होगा, धर्म तो सबका होगा। वो भेदभाव नहीं करता, हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है, कि स्वभाव है, प्रकृति है, नियम है, कुदरत के बंधे बनाए कानून है, उसके मुताबिक सारी प्रकृति चलती है, सारा विश्व चलता है, उसको धर्म कहते हैं। एक एक अणु सजीव है या निर्जीव है धर्म धारण करता है, धर्म उसे धारण करता है, सारी प्रकृति इस प्रकार चल रही है। सूरज उगता है, प्रकाश भी देता है, उष्णता भी देता है, ये उसका स्वभाव है। वो इस बात का पक्षपात नहीं करता कि मैं केवल हिंदुओं को दूं क्योंकि वो नमस्कार करते हैं, बौद्धों को दूं क्योंकि वो नमस्कार करते हैं, या कि मुसलमानों को दूं, क्या इसको, सबको देता है ना प्रकाश। प्रकाश भी देता है, उष्णता भी देता है। अगर प्रकाश देना बंद कर दे, उष्णता देनी बंद कर दे, तो सूरज सूरज नहीं है, चंद्रमा है प्रकाश देता है, शीतलता देता है, वो प्रकाश देना बंद कर दे, शीतलता देनी बंद कर दे, चंद्रमा चंद्रमा नहीं है। इसमें हिंदू पने की, बौद्ध पने की, जैन पने की बात क्या? धर्म सार्वजनीन होता है, ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये जानना आसान हो जाएगा कि कैसे चलें, धर्म के रास्ते कैसे चलें। तो आगामी चार दिनों में इस विद्या को एक रूपरेखा समझ में आएगी। कैसे चलें ऐसे सीखने के लिए तो अपने जीवन के 10 दिन समर्पण करने पड़ेंगे। सीखने के लिए एक एक कदम कैसे चलें ऐसा सीखने के लिए किसी एक स्थान पर जहाँ बाधाएं कम से कम हों वहाँ जाकर के विद्या सीखनी होती है। अपने यहाँ की बहुत पुरानी विद्या है, दुर्भाग्य से पिछले 2000 वर्षों से नष्ट हुई, यहाँ पर नष्ट हुई या फिर आई है तो इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन बात मुख्य यही है कि धर्म को धर्म समझ करके चलेंगे तो हम धर्म धारण कर पाएंगे। धर्म को जैसे ही हिंदू कहा, बौद्ध कहा, जैन कहा, ईसाई कहा तो उनके कर्मकांडों को पूरा कर लेंगे, उनके वेशभूषा को पूरा कर लेंगे, उनके पर्व त्यौहार को मान के रह जाएंगे, भीतर धर्म धारण कर रहे हैं कि नहीं इसे भूल ही जाएंगे, धारण करना अलग हो जाएगा। तो वो सारी बातें अपनी जगह, जो बातें किसी एक समाज से बांधती है, एक संप्रदाय से बांधती है, एक समूह से बांधती है, बुरी नहीं, वो अपनी जगह, लेकिन धर्म का उससे लेन देन नहीं। धर्म तो एक ही मापदंड से मापा जाए कि मैं अपने चित्त को कैसे निर्मल कर रहा हूँ, कितना निर्मल कर रहा हूँ, और उस निर्मलता की वजह से मेरा शारीरिक कर्म, मेरा मानसिक कर्म, मेरा चित्त वाणी का कर्म शुद्ध हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, औरों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है ना, अपना भी मंगल करता है, औरों का भी मंगल करता है। ये बात, इसके प्रति सजग रहना सीखे तो समझो कि धर्म के प्रति सजग है। धीरे धीरे ये व्यक्ति धर्मवान बनते जा रहा है, धार्मिक बनते जा रहा है, धर्मिष्ठ बनते जा रहा है। अब वो अपने को हिंदू कहे बड़ी अच्छी बात, बौद्ध कहे बड़ी अच्छी बात, जैन कहे बड़ी अच्छी बात, कुछ फर्क नहीं पड़ता, धर्मिष्ठ हो रहा है, धर्मवान हो रहा है तो सुख शांति का जीवन स्वयं जीता है, औरों के लिए सुख शांति का निर्माण करता है। बाकी ऊपरी ऊपरी बातें, चाहे वो कर्मकांड की बातें हों, चाहे वो वेशभूषा की बातें हों, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम उसकी निंदा नहीं करते। हर कर्मकांड जब चला तो बहुत निर्मल रूप से चला होगा, ऐसे ही हर वेशभूषा चली, अलग अलग संप्रदाय की, अलग अलग संप्रदाय के संतों की अपनी अपनी वेशभूषा चली, बड़ी निर्मल रूप में चली होगी, लेकिन धीरे 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 वो रूढ़ हो गई, धर्म का सार निकल गया, क्योंकि धर्म का महत्व छोड़ गए, धर्म का अर्थ भूल गए, धर्म धारण करना भूल गए, तो उसका कोई मायने नहीं रह गया, बल्कि बंधन बन गया। गंगा का पानी चलता है, गंगोत्री में जो गए होंगे वहां देखा होगा कितना निर्मल जल है गंगा का, हिमालय से निकलता है, हिमालय की ऊंचाइयां, हिमालय की पवित्रता, हिमालय की निर्मलता, वो निर्मलता लिए हुए जल चलता है, जब तक ऊंचाइयों पर है, पहाड़ों पर है, तब तक निर्मल ही निर्मल, इतना पारदर्शी कि नीचे के पत्थर तक दिखाई दें, कंकड़ तक दिखाई दें, एक चल्लू पानी पी लो काया तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, इतना निर्मल। लेकिन जैसे ही पहाड़ों से नीचे गिरा मैदान में, अब देखो यहाँ का नाला आकर के पड़ा उसमें, वहाँ का नाला पड़ा उसमें, और यूँ होते होते वही गंगा का जल गंगा सागर तक पहुँचा, कलकत्ते तक पहुँचा, तो अरे कितना मैला हो गया, पहचानने भी ना आए कि वो गंगोत्री वाला जल है क्या, ये इतना मैला हो गया कि पिए ही ना जा सके। भाई सारे कर्मकांडों की यही बात है, सारी वेशभूषाओं की यही बात है, सारे व्रत त्योहारों की यही बात है, चले होंगे बड़ी निर्मलता के साथ, लेकिन आज हमने क्या हालत बना ली, आज तो उसको इस प्रकार बना लिया जैसे यही हमारा धर्म है। कोई कहता है ये चोटी रखना ही मेरा धर्म है, कोई कहता है ये दाढ़ी रखना ही मेरा धर्म है, कोई कहता है लंबे केश रखना मेरा धर्म है, कोई कहता है सिर मुंडाना मेरा धर्म है। अरे चोटी रख करके भी अगर तू मन को मैला किए जा रहा है, तेरा सारा जीवन विकारों से भरा हुआ है, धर्म कहाँ रे? दाढ़ी रख करके भी, सिर मुंडा करके भी, बड़े केश रख करके भी, अगर तेरा सारा जीवन दुष्कर्मों से भरा है, दुष्चरित्र से भरा है, काया वाणी चित्त के सारे कर्म तेरे मैले हैं, धर्म कहाँ से आया रे? इसका धर्म से क्या संबंध? चली होगी बात, हम केवल अनुमान कर सकते हैं, चली होगी बात। पुराने समय में अपने यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषिकुल हुआ करते थे, राजा का लड़का भी उसी में उसी प्रकार पढ़ता था जैसे किसी एक गरीब का लड़का, सारे के सारे ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, 25 वर्ष तक पढ़ते थे। अब उनका काम केवल पढ़ना ध्यान करना, पढ़ना ध्यान करना, यही 25 वर्ष बीतता था, कहाँ फुर्सत उनको कि आजकल के फैशन की तरह बाल काटें और उस पर ये लगाएं और वो लगाएं, तो बस बाल बढ़े जा रहे हैं, सिर के भी, मूछ के भी दाढ़ी के भी बढ़े जा रहे हैं, उनको अपने काम से काम है। अब वो गृहस्थ जीवन में आते हैं तो उसको याद रखने के लिए एक थोड़ी सी शिखा रख ली, अच्छा 25 वर्ष हमने ऐसे बिताए, बड़े सात्विक बिताए, बड़े संयम से बिताए, इसलिए अब भी बड़े संयम से रहूंगा उसको याद रखने के लिए, उसमें गांठ बांध के रखता है। अभी भी तो ऐसा होता ही है, कोई जाए बाजार खरीदने के लिए तो घरवाली कहती है याद रखना वो फला सामान तुम्हें लाना है, भूल मत जाना। भूल जाते हो तुम, बहुत भूल जाते हो, अपनी रुमाल पर एक गांठ बांध लो तो याद रखोगे। तो गांठ बांधने की बात है ना, चोटी पर गांठ बांध ली, चली होगी कोई बात इस तरह से। ऐसे ही दाढ़ी रखी, कोई बेचारा गया अरब देश में, यहाँ कोई एक संत हुआ, बहुत बड़ा संत हुआ, उसने ऐसा धर्म दिया, ईमान दिया, मुकम्मल ईमान दिया, सत्य दिया, मुसल्लम ईमान दिया, और मैं उसको पालन करने वाला, मुसल्लम ईमान को पालन करने वाला मुसलमान, तो उसको याद रखने के लिए हमने दाढ़ी रखी। याद रखेंगे, हम वहाँ जाकर आए हैं, हमको मुसल्लम ईमान का पालन करना है, सच्चाई का पालन करना है, रख ली बड़ी अच्छी बात। किसी ने अपना सिर मुंडाया, अरे किस पर आसक्ति रखें, क्या पड़ा है इसमें, बालों को सजाओ संवारो, ऐसे निकालो ऐसे वैसे सजाओ, ये करो ये तेल डालो, अरे निकालो खत्म करो, बात खत्म हुई। अनासक्ति के लिए, निसंगता के लिए सिर के सारे बाल काटे। किसी ने बाल रखे, क्यों रखे, लंबे बाल रखे, इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है कैसे आरंभ हुआ। अपने यहाँ एक संत हुआ, बड़ा महान संत हुआ, सदगुरु, बड़ा महान सदगुरु हुआ। उस वक्त इस ओर के सारे देश में बड़ी अराजकता फैली हुई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बेचारे दुर्बल थे उन पर बड़ा अत्याचार होता था। तो उसने सोचा कि एक सेना होनी चाहिए, धर्म की सेना होनी चाहिए, ऐसी सेना होनी चाहिए जो इस तरह के सारे अत्याचारों का सामना कर सके। जब कोई आदमी किसी पर अत्याचार कर रहा हो, कोई गुंडा कोई बदमाशी कर रहा हो, और वहां से देखे कोई पुलिस का आदमी आ गया तो भाग जाता है डर कर। क्यों भाग जाता है, उसे कैसे पता लगा ये पुलिस का आदमी है, उसका अपना यूनिफॉर्म है, उसकी वर्दी है, उसकी एक पहचान है। तो ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो समाज के पुलिसमैन हैं, समाज के सैनिक हैं। तो सिर के बाल बढ़ाए, केश बढ़ाए, मूछ बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ाई, ताकि दूर से ही मालूम हो जाए, दूर से मालूम हो जाए ये सिपाही है, लेकिन संत सिपाही है, साधारण सिपाही नहीं है, संत सिपाही है। और ये भ्रम नहीं हो जाए कि उसने बाल रखे हैं तो ये कोई सन्यासी है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ है। तो उस व्यक्ति ने 5 कक्के दिए, 1 कक्का दिया केश, लंबे केश रखो, केश को जरा भी मत कतरो, क्योंकि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है। दूसरा दिया कंघा, साफ रखो इसे, उलझाना नहीं, ये सन्यासियों का काम कि उलझाई हुई जटा रखे, तुम गृहस्थ हो, भीतर से भी साफ बाहर से भी साफ। तो कंघा दिया साफ रखने के लिए, और क्या दिया, एक हाथ में कृपाण दी, तीसरा कक्का दिया, तलवार दी, लेकिन उसके साथ साथ हथकड़ी दी, हाथ में एक कड़ा दे दिया कि तलवार कब उठे, किस पर उठे, सजग रहो, जैसे ही तलवार उठी है कड़ा याद आए तुम्हें किस पर उठ रही है, किसी निरपराध पर तो नहीं उठ रहे, किसी अबला पर तो नहीं उठ रहे, किसी दुर्बल पर तो नहीं उठ रही, हम किस पर तलवार उठा रहे हैं, इसके लिए खूब सजग रहे। 5वां कक्का दिया, कच्छा पहनो, जब हाथ में तलवार आती है, ताकत आती है, तो आदमी अपना होश खो बैठता है, सत्ता के मारे पागल हो जाता है, और न जाने किस तरह के दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। तो कांच का पक्का होना चाहिए, तो कच्छा दिया, अरे 5 कक्के जिस आदमी ने सदगुण जगाने के लिए दिए, और हमने क्या हालत बना ली अपनी, हर बात हर कर्म कांड हर दिखावा शुरू होता है बड़े शुद्ध रूप में, लेकिन बिगड़ते 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 उसका रूप बदल जाता है, उसका सही रूप सामने आए तो धर्म से विरोध नहीं होता, धर्म के साथ चलेगा, लेकिन क्योंकि उसे ठीक से समझते नहीं इसलिए विरोध होना शुरू हो जाता है। नहीं तो आदमी हमेशा सजग रहेगा कि मुझे, मैं क्या कर रहा हूं इस समय, क्या कर रहा हूं, अपने भीतर देखता रहेगा इस समय क्या कर रहा हूं, इस समय मैंने अपने मन में क्या जगाया, कोई विकार जगाया, देख व्याकुल होने लगा ना, और व्याकुल होने लगा, सजग हो गया, व्याकुलता दूर हो जाएगी, वो विकार दूर हो जाएगा। हम होश नहीं रखते हैं, उस व्याकुलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि उस विकार को बढ़ाते हैं। एक घटना से समझें, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया, उसने एक बार गाली दी क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, मुझको सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने मुझे एक बार गाली दी मुझको व्याकुल बनाने के लिए, एक बार व्याकुल बनाने के लिए, एक बार गाली दी, एक बार भी अकुल बनाने के लिए। पागलपन मेरा यही था कि मैंने उस गाली को स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे बड़ा पागलपन और करता हूं मैं कि उसने गाली दी और वो चला भी गया, वो भूल भी गया उस घटना को। मैं नहीं भूलता, बार बार याद करता हूं। उसने गाली दी, उसने मुझे गाली दी, और जितनी बार याद करता हूं उतनी बार क्रोध जगाता हूं, उतनी बार व्याकुल होता हूं। जितनी बार याद करता हूं क्रोध जगाता हूं व्याकुल होता हूं। उसने तो एक बार व्याकुल करना चाहा, मैं कहता हूं तुम मुझे व्याकुल करना चाहते हो, आओ हाथ मिलाओ, मैं हजारों बार व्याकुल होऊंगा। कभी कभी तो ऐसे पागलपन में कहते हैं कि जन्म भर नहीं भूलूंगा, ऐसा अपमान हुआ मेरा। अरे मत भूलना, जन्म भर नरक में सड़ेगा, जलेगा भीतर ही भीतर। 7 जन्म नहीं भूलूंगा, 7 जन्म नरक में रहेगा। कर क्या रहा है, होश नहीं। हर आदमी की हालत है, होश नहीं। बाहर बाहर के आलंबनों को प्रमुखता दिए जा रहे हैं, भीतर क्या होने लगा? अरे भीतर क्या होने लगा वो ज्यादा प्रमुख है तेरे लिए। उसने गाली दी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। उसको अगर तू ये समझता, अगर अच्छा साधक है भीतर भी तो व्याकुल है ही ना, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जब जब क्रोध जगाता हूं तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूं। ये तो कुदरत का नियम है, इसने भी क्रोध जगाया है, बड़ा व्याकुल है। अरे ये बेचारा व्याकुल था कि बाहर कैसे निकले रे, ये रोगी है रे, ये रोग के बाहर कैसे निकले रे। यो मैत्री जागे, यो करुणा जागे, यो सद्भावना जागे, आग जल रही है उसके अंदर, तो मैं यहां से ठंडा पानी डालूं ताकि शांत हो, मैत्री का पानी डालूं, करुणा का पानी डालूं, और न कि पेट्रोल डालूं। होश नहीं है तो मैं पेट्रोल डालता हूं, वो मेरी आग पर पेट्रोल डालता है, मैं उसकी आग पर पेट्रोल डालता हूं, दोनों के दोनों व्याकुल, दोनों के दोनों दुखियारे। धर्म नहीं समझ में आया, और दोनों के दोनों अपने को धर्मवान मानते हैं, बड़ा पक्का धर्मवान मानते हैं। क्यों, किसी मंदिर में जाकर के किसी देवी देवता की पूजा कर ली, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लिया, किसी गिरजाघर में जाके प्रेयर कर ली, किसी गुरुद्वारे में जाके पाठ कर लिया, किसी बौद्ध चैत्य में जाकर के कोई पाठ कर लिया, कोई और कर्मकांड कर लिया, मैं बड़ा धर्मवान हूं, मेरे धर्मवान होने में क्या कसर है? क्योंकि धर्म की व्याख्या ही भूल गए, धर्म सचमुच क्या है इसे ही भूल गए, तो धारण कैसे करेंगे? अन्य अन्य बातों को धर्म मानने लगे तो उन्हीं को धारण किए जा रहे हैं और अपने को बड़ा संतुष्ट मानते हैं। इतना हो तब तक भी पागलपन है, उससे लाभ कुछ नहीं होता, पर इससे भी ज्यादा गई गुजरी हालत हो गई। मेरा धर्म, इसको बचाने के लिए उसके धर्म को नष्ट करना पड़ेगा। उसका धर्म कायम रहेगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसकी मस्जिद तोड़नी पड़ेगी, उसका मंदिर तोड़ना पड़ेगा, उसका गिरजाघर तोड़ना पड़ेगा, उसका गुरुद्वारा तोड़ना पड़ेगा मेरे धर्म को बचाने के लिए। क्या हो गया रे, मेरा धर्म खतरे में, मेरा धर्म खतरे में। अरे कभी होश नहीं आया, तेरा धर्म तो उसी क्षण खतरे में आ गया जब तूने अपने मन में विकार जगाया। जैसे ही तूने अपने मन में क्रोध जगाया कि द्वेष जगाया कि दुर्भावना जगाई, खतरे में आ गया रे तू, उसके बाहर निकलना। किसी के मंदिर तोड़ने से, मस्जिद तोड़ने से, गिरजाघर तोड़ने से, किसी घर में आग लगाने से, किसी को मार देने से तेरा धर्म कैसे बचेगा? तेरा धर्म तो गया ही, जागते ही गया, मन में विकार जागते ही गया और दुष्कर्म करने लगा तो और गया। समझना भूल गए ना, धर्म को हिंदू बना लिया, बौद्ध बना लिया, जैन बना लिया, ईसाई बना लिया, तो धर्म ने अपना अस्तित्व ही खो दिया, वो अस्तित्व जो हमारे लिए कल्याणकारी है। उस अस्तित्व को महान बनाए, बार बार यही चिंतन हो कि हमको धर्म में स्थापित होना है। हम अपने आप को बौद्ध कहेंगे कोई दोष की बात नहीं, हिंदू कहेंगे कोई दोष की बात नहीं, जैन कहेंगे, ईसाई कहेंगे, मुसलमान, पर धर्मिष्ठ तो होंगे ही। एक धर्मिष्ठ हिंदू बड़ा कल्याणकारी होता है, एक धर्मिष्ठ बौद्ध बड़ा कल्याणकारी होगा, एक धर्मिष्ठ मुसलमान, एक धर्मिष्ठ ईसाई बड़े कल्याणकारी होंगे, समाज के लिए बहुत बड़े आदर्श होंगे, समाज के सुख शांति में बहुत बड़े सहायक होंगे। धर्मिष्ठ नहीं होगा, पापिष्ठ होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे अपनी भी हानि करेगा, औरों की भी हानि करेगा। तो आज की सभा में एक बात बहुत अच्छी तरह से समझें कि स्वभाव प्रकृति का, नियम प्रकृति का वही धर्म होता है, कुदरत का कानून यही धर्म होता है। हमारे यहाँ एक संत ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया धर्म के लिए, कहा किम सचियारा होविये किम कूड़े तुट्टे पाले ओ हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाले। कि मैं सचियारा होवी, कैसे सचियारे बने? धर्म की बात, सत्य धर्म, सद्धर्म, सत्य के सिवाय कहीं कोई कल्पना नजदीक नहीं आने पाए, तो सचियारा केवल वाणी का सचियारा नहीं, भीतर सच्चाई के सहारे 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 ही चले, वो व्यक्ति सचियारा कहलाया। भारत में यहाँ भी दुखियारा शब्द खूब चलता है, दुखियारा वो कि जिसके पास सुख का नामो निशान नहीं, सुखियारा शब्द चलता है जिसके पास सुख का नामो निशान नहीं। इस संत ने एक नया शब्द दिया सचियारा, जिसके पास झूठ का नामो निशान नहीं। तो कहता है किम सचियारा हो विए, किम कूड़े तुट्टे पाल, झूठ की एक परत नहीं रह जाए, सारी झूठ दूर कर दें, कोई कल्पनाएं नहीं, कुछ नहीं, सब जो सत्य अनुभूति पर उतर रहा है, तो उससे क्या होगा? हुकुम रजाई चलना, तो चलना आ जाएगा। कैसे चलना आ जाएगा? हुकुम रजाई, हुकुम रजाई माने धर्म के रास्ते चलना आ जाएगा। क्या हुक्म है इस प्रकृति का, क्या हुक्म है, या उसे परमात्मा कहें तो परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या कामना है, क्या चाहता है वो? यही चाहता है मन में विकार पैदा करोगे हम तुरंत दंड देंगे तुम्हें, थोड़ा भी तुम पर लिहाज नहीं करेंगे, और मन को निर्मल बनाओगे, सद्गुण भरोगे, तुम्हें खूब पुरस्कार देंगे। यही चाहता है प्रकृति, यही चाहती है ईश्वर, यही चाहता है। अरे उसी के मुताबिक चलना है भाई, तो हुकुम रजाई चलना। वो हुकुम रजाई कहाँ मिलेगी? धर्म पुस्तकों में नहीं मिलती, उलझ जाते हैं। ये प्रवचन सुनने आए हो, इन प्रवचनों में नहीं मिलेगी, उलझ जाओगे, केवल बुद्धि विलास करोगे, वाणी विलास करोगे, घर जाकर हाँ बड़ा अच्छा सुना, बात तो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी, देखा नहीं ना, भीतर देखा नहीं ना। तो हुकुम रजाई चलना, वो नानक लिखिया नाले, अपने साथ भीतर लिखा हुआ है, ये सारा कुदरत का कानून अपने भीतर लिखा हुआ है। भीतर देखना आ गया तो धर्म एकदम समझ में आना शुरू हो जाएगा। देख अहंकार जगाया ना, और कुदरत ने दंड देना शुरू किया ना, क्रोध जगाया ना, दंड देना शुरू किया ना, ईर्ष्या जगाई ना, दंड देने मिलना शुरू हो गया ना, हुक्म मालूम हो गया। पवित्रता जगाई, निर्मलता जगाई, मैत्री जगाई, सद्भावना जगाई, और जगाते ही देख कितना पारितोषिक मिलना शुरू हो गया, पुरस्कार मिलना शुरू हो गया, कितनी शांति मिले, ये सारा कानून अनुभूतियों पर उतरे तो कल्याण की बात हो। एक आदमी गलती से आग पर हाथ रखता है, आग तो छोड़ेगी नहीं, जलाएगी हाथ को, खराब लगा उसे, फिर कहीं दूसरी बार गलती से रख दिया, फिर जला, अब बड़ा सजग रहेगा, जहाँ कहीं आग होगी अपने हाथ को दूर रखेगा, ना बाबा ना, ये आग है, ये जलाती है, ये आग है, ये जलाती है, क्योंकि अनुभव कर लिया ना। अब मुसीबत हमारे यहाँ यही हो गई कि हमने धर्म का दर्शन करना छोड़ दिया, धर्म का साक्षात्कार करना छोड़ दिया, इस कुदरत के कानून को अनुभूति पर उतारना छोड़ दिया। इस विद्या द्वारा, जो कि अपनी बहुत पुरानी विद्या है, इसकी प्रशंसा, जो सबसे पुराना साहित्य अपने यहाँ उपलब्ध है, वेदों का साहित्य, उसमें बड़ी प्रशंसा विपश्यना की, यो विश्वाभि विपश्यति भुवन संच पश्यति सेने पर्षदति द्विषः। जो विपश्यना करता है, सम्यक रूप से करता है, वो सारे द्वेषों से दूर हो जाता है। लेकिन वाणी ही वाणी, कैसे करें विपश्यना, ये तो भूल गए। 2500 वर्ष पहले इस हिमालय की पावन धरती ने एक ऐसा रत्न पैदा किया, एक ऐसा महापुरुष पैदा किया जिसने ये विद्या करनी सिखाई। अब केवल मंत्रों की बात नहीं, अब केवल सिद्धांतों की बात नहीं, कैसे करें विपश्यना, कैसे करें, माने सत्य को अपने अनुभवों द्वारा कैसे जाने, धर्म को अपनी अनुभूति द्वारा कैसे जाने, अंतर्मुखी हो करके। बाहर किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, बाहर अनचाही घटना घटी, मेरे भीतर क्रोध जागा, अब मैं उस क्रोध को देखने लगा, देख क्रोध जागा है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, बड़ा तनाव आया है, धड़कन बढ़ी है, बड़ी गर्मी बढ़ी है, सबको देखता चला जाए, माइंड और मैटर का इंटरेक्शन क्या चल रहा है, मन और शरीर किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे ये हमारा विकार बढ़ते जा रहा है, इसको देखते 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 उसके बाहर निकलना शुरू हो गया। तो यही काम था धर्म का, इस काम को अनुभव से नहीं जाने, केवल प्रवचनों से समझ लेना चाहें तो बात बनती नहीं, पर धर्म धर्म गंगा के तट पर आए हो, धर्म गंगा का तट बड़ा सुहावना होता है, गंगा का तट तो सुहावना ही होगा, बड़ा कल कल निनाद है, बड़ा प्रिय लगेगा, बड़ी मधुर हवा, बड़ी शीतल हवा चलेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। लाभ नहीं मिलेगा प्यासे आदमी को, प्यासे आदमी को लाभ तब मिलेगा जब उसमें डुबकी लगाएगा, गंगा में डुबकी लगाएगा तो लाभ मिलेगा, चुल्लू भर पानी पिएगा तो लाभ मिलेगा, अन्यथा केवल कल कल निनाद सुन के चला जाएगा। तो भाई आगामी 4 दिनों में यहाँ जब आओ तो केवल वाणी विलास के लिए नहीं, केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं, केवल श्रुति विलास के लिए नहीं, यह आवश्यक होता है। धर्म पहले सुनना होता है, फिर उस पर चिंतन मनन करना होता है। ये आवश्यक है प्रेरणा देने के लिए, ये आवश्यक है हमको मार्गदर्शन देने के लिए। पर लाभ तो तभी मिलता है जबकि धारण करें, और धारण करने की अपने यहाँ की लुप्त विद्या फिर वापस आई है, इसका उपयोग करेंगे, इस गंगा में डुबकी लगाएंगे ही, इस दृढ़ता के साथ इन प्रवचनों का लाभ लेंगे। जो जो लोग आज की इस धर्म सभा में आए हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है उन सब में प्रत्येक के भीतर धर्म का बीज है। धर्म का बीज नहीं होता तो ऐसी धर्म सभा में नहीं आते। गए होते कहीं किसी सिनेमा में, किसी थिएटर में, किसी नाचघर में, कोई आमोद में, कोई प्रमोद में, यहाँ क्या करने आते? यहाँ आए हो यही इस बात का सबूत है कि भीतर धर्म का बीज है। लेकिन मनुष्य का सा अनमोल जीवन और सारा जीवन ये बीज लिए ही चले जाए, ये बीज अंकुरित नहीं हो, ये बीज बढ़े नहीं, फल नहीं आए इसके, तो हमारे क्या काम का? अब ये फलित फूलित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए, और वो तभी होगा जबकि अपने भीतर सच्चाई को देखना शुरू कर दोगे। जो जो आज की धर्म की सभा में आया है वो अपने भीतर सच्चाई देखने सीखने का समय निकाले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, धर्म सबका कल्याण करता है। जो धारे उसी का मंगल हो, जो धारे उसी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। लो, ओ, लंबे प्रश्न हैं। मैंने आपका अति मूल्यवान प्रवचन आज शाम को तीसरी बार सुनने को मिला। सबसे पहले बूढ़ा नीलकंठ स्कूल में, दूसरी बार आनंद कुटी विद्यालय में, उन दो बार दो जगह में आपके शिष्यों से आपका प्रवचन सुनकर मैंने दो बार विपश्यना शिविरों में भी शामिल होकर विपश्यना ध्यान करने की विधि आपके शिष्यों से सीखी। फिर भी एक बात और दिल में खटकती रहती है, वह राजनैतिक है या नहीं वह मैं नहीं जानता। प्रश्न ये है कि आज की शाम के प्रवचन के प्रश्नोत्तर के वक्त पर मेरा कि दुनिया के किसी भी मुल्क जिसमें बहुत फ़र्क संस्कार, फ़र्क वेशभूषा, फ़र्क भाषा, फ़र्क एथनिक ग्रुप्स, ट्राइब्स, कम्युनिटीज़, ब्ला ब्ला ब्ला, लोग जिसने फ़र्क धर्म और संप्रदाय की मौजूदा बातें करते हैं, उस मुल्क की संविधान धर्म निरपेक्ष होना चाहिए या धर्म सापेक्ष होना चाहिए? मैं जानता हूँ पड़ोस के देश में यानी भारत में जो संविधान बना तो उसमें अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुआ सेक्युलर, लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तो उसे धर्म निरपेक्ष कहा। गलत बात हुई, कहना वो ये चाहते थे संप्रदाय निरपेक्ष, लेकिन कह गए धर्म निरपेक्ष। उनका दोष नहीं है क्योंकि भाषाई भूल बैठे हम। सदियों से हमने ये हालत बना ली कि धर्म और संप्रदाय हमारे लिए पर्यायवाची हो गए। धर्म कहते हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो यही कहना चाहते हैं कि हम किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं करेंगे, इसलिए धर्म निरपेक्ष हैं। कहना उनको ये चाहिए कि हम संप्रदाय निरपेक्ष हैं, धर्म तो सापेक्ष होगा। कोई भी राज्य धर्म सापेक्ष ही होना चाहिए। धर्म और संप्रदाय के हिसाब से नेपाल को हिंदू संवैधानिक राजतंत्रात्मक अधिराज कहना कितना उचित है? गौतम बुद्ध का जन्मभूमि नेपाल को हिंदू राज्य कहना और हिंदुस्तान को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहना क्या ठीक है? संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध होने के नाते उसने भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोलना, और नेपाल के संविधान निर्माता राजनेता हिंदू होने के नाते हिंदू राज्य बोलना ठीक है कि बेठीक है? क्या होना चाहिए? अयोध्या का राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, सांप्रदायिक लोग नेपाल में न हो, कृपा करके प्रकाश डालिए। बहुत सीधी सी बात है, चाहे सो नाम रखो ना। हिंदू कहने में क्या बुरी बात है अपने को, बौद्ध कहने में क्या बुरी बात है अपने को, लेकिन धर्म, धर्म तो सार्वजनीन है ऐसा समझ जाएंगे तो धार्मिक हिंदू होगा बड़ा कल्याण होगा, धार्मिक बौद्ध होगा बड़ा कल्याण होगा। हम उस संप्रदाय के झगड़े में नहीं पड़े, धर्म को उससे अलग रखें और उसको धारण करें। डॉक्टर अंबेडकर ने, वो हिंदी इतना नहीं जानते थे, सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया, अनुवाद में भूल हुई, धर्म निरपेक्ष शब्द हुआ। तो इन जंजालों में इन झगड़ों की बातों में नहीं जा करके हमें धर्म धारण करना है, और धर्म तो व्यक्ति व्यक्ति को धारण करना होता है। हम चाहें कि सारा का सारा राष्ट्र हमारा धार्मिक हो जाए तो चाहें जरूर, पर हमारे चाहने से क्या होगा? एक एक व्यक्ति धार्मिक होगा तो अपने आप सारे समाज पर, सारे राष्ट्र पर और यूँ सारे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो लक्ष्य यही होना चाहिए, संविधान जो कहता है सो कहता है। लक्ष्य हर आदमी का अपने कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं धार्मिक कैसे बनूं, सही माने में धार्मिक कैसे बनूं। आपके प्रवचन से मैंने समझा कि जीवन अनुसंधान का विषय है और परम धर्म जीवन के अंत में भी प्राप्त हो सकता है। यदि यह सच है तो पुनर्जन्म को आप कैसे समझेंगे? अरे भाई, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। ऐसे भी आते हैं जो पूर्व जन्म और पश्चात जन्म को मानने वाले हैं, ऐसे भी आते हैं जो नहीं मानने वाले हैं। उसमें हम क्यों झगड़ा करें? हम तो कहते हैं इस जन्म को तो मानते हो ना, इसको भी नहीं मानते, इसको मान रहे हो। अरे इसी क्षण तुम मैल जगाए जा रहे हो और दंडित हुए जा रहे हो। मैल जगाते हो, दंड जागता है। अरे बाबा, इससे तो बचो ना। पूर्व जन्म है तो बचो, नहीं है तो बचो। वापस जन्म होगा कि नहीं होगा, उस जंजाल को एक बार छोड़ो, इस जन्म को सुधारो, अपने आप समाधान हो जाता है और सबके लिए इसी में कल्याण है। धर्म के संदर्भ में स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह, बात ठीक ही है क्या? स्वधर्म, मनुष्य का अपने एक धर्म होता है। मनुष्य के पास ही कुदरत ने या ईश्वर ने कहो इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के सत्य का दर्शन कर सकता है। ये काम एक पशु नहीं कर सकता, एक पक्षी नहीं कर सकता, एक सरीसृप नहीं कर सकता, एक कीट पतंग नहीं कर सकता, एक प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास ही शक्ति है और वो शक्ति हम खोए बैठे हैं और वो अपना नहीं इस्तेमाल करते तो पर धर्म का जीवन जी रहे हैं ना, पशुओं के धर्म का जीवन जी रहे हैं। स्वधर्म निधन अंश ही है, उस अर्थ में समझेंगे तो कल्याण होगा। धर्म को कब से संप्रदाय ने विकार लाना शुरू किया? क्यों धर्मगुरु ने इसे प्रोत्साहित किया? कोई धर्मगुरु प्रोत्साहित नहीं करेगा। जब धर्म ही लुप्त होने लगा, लोगों ने धारण करना बंद कर दिया, तो डूबते को तिनके का सहारा, किसी कर्मकांड को पकड़ लिया, किसी वेशभूषा को पकड़ लिया, किसी मान्यता को पकड़ लिया और समझा इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार दूषित होता चला गया। क्या विपश्यना ही एक साधन है जिससे मुक्ति मिलती है? और भी बहुत सी ध्यान विधि है, क्या उनसे मुक्ति या निर्वाण नहीं मिलता? विपश्यना मत कहो, हमें उस नाम से चिपकाव हो जाएगा तो ये होगा कि हमारे रहते तो विपश्यना संप्रदाय बने न बने, लेकिन एक दो पीढ़ी के बाद एक विपश्य संप्रदाय और खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बाप विपश्यी था तो बेटा भी विपश्यी कहेगा अपने आप को, फिर पोता भी विपश्यी कहेगा। वो विपश्यना करें या ना करें अपने को विपश्यी कहेंगे। बाबा उसी से बचना है तो विपश्यना शब्द न इस्तेमाल करो, उसको विदर्शना कहो, उसको आत्मदर्शन कहो, उसे सत्य दर्शन कहो, उसे धर्म दर्शन कहो। सच्चाई को देखना है, किम सचियारा हो भी किम कूड़े तुट्टे पार। कल्पनाओं के सहारे तुम मुक्त होना चाहोगे तो भाई होने वाली बात नहीं है। सत्य के सहारे तुम चलोगे तो परम सत्य तक पहुंचोगे, ये निश्चित बात है और करके देखने वाली बात है। अनित्य का शिक्षा देने वाले विपश्यना केंद्र में अक्षय कोष का अर्थ अक्षय कुछ नहीं होता भाई, सारा कुछ नष्ट हुए जा रहा है। जो अक्षय कोष किसी ने बनाया भी होगा, समय पाकर वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। वाणी चातुर्य और इंटेलिजेंस ही दुनिया के धर्म, दुनिया में धर्म माना जाता है। जिससे उसका वाणी चातुर्य नहीं और इंटेलिजेंट नहीं, उन लोगों का भूपसिर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? धर्म को वाणी पर उतारना पड़ता है। अनुभव किया है, उसे किसी को बताए नहीं तो दूसरे लोगों को मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? लेकिन अनुभव न करे, केवल बोले ही बोले बोले ही बोले, तो चारुवाक होगा। बोलने में बड़ा चतुर है तो चारुवाक है, जीवन में धर्म नहीं उतरा तो चारुवाक नहीं बनना है। धर्म हमको चारुवाक नहीं बनाता, जीवन में उतरे, जो बोले सो करे, जो करे सो बोले, तो समझो धर्मवान व्यक्ति है।